अब सवाल पैदा होता है कि जब कोई फोकस्ड नहीं रहता, अब यहां छोटा सा समझ ली जुमला अगलियत को समझने के लिए कि हनीफियत क्या है, कि तुम्हारी सारी निस्बतें, तुम्हारी मोहब्बतें, एसोसिएशन एक अल्लाह के साथ हो, और जब अल्लाह के साथ होगी तो अल्लाह के रसूल के साथ होगी ना, قال الله وقال رسول. जब इसमें कमी आती है उसका नतीजा क्या निकलता है, यह आयत 32 में बता दिया, मिनल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम, यानी इन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और वो क्या थे, वकानु शियान, और वो मुख्तलिफ गिरोह बन गए, यानी मुनीब बनो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, नमाज पढ़ो, मुशरिकों में से ना हो जाना. मुशरिक कौन है, यहां इस आयत को देखें तो कांप के रह जाएंगे, पिछली आयत में था वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, तो यहां बताया जा रहा है कि मुशरिक कौन है, अल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम वकानु शियान. क्लियर होगी बात, दीन में फिरके पैदा करने वालों को यहां मुशरिक कहा गया. वजह क्या है कि नजरें अल्लाह और उसके रसूल से हटकर दूसरी शख्सियात पे लग गई. हर फिरका किसी न किसी की मोहब्बत का मजहर है, या जगहों का, इलाकों का, या शख्सियात का. आप जितने फिरके आपके नजर में हैं जरा सबके नाम लिख के देखिए, किसी जगह शहर है तो किसी जगह शख्सियत है. बरेलवी के हैं बरेली शहर, देवबंदी के हैं देवबंद शहर से निस्बत, हनफी के हैं इमाम अबू हनीफा से निस्बत, और अहमदी कौन है, इमाम अहमद है उनसे निस्बत. हर जगह इंसान जब वो है, अल्लाह कहते हैं इन्होंने तो दीन को फिरके फिरके कर दिया. और याद रखिए, दीन से सारी रूहानियत निकल जाती है जब लोग फिकी बहसों में पड़ जाते हैं. हाथ नमाज में कहाँ रखे, ऊपर रखे, नीचे रखे, सजदा कैसे करे, इस पे इतनी बहस है कि नमाज की असल रूह का नहीं पता. लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, इस पे कोई बहस नहीं है. नमाज नहीं पढ़ने वाला काफिर होता है, ये कोई इशू नहीं है. हाँ, नमाज कैसे पढ़ रहे हो, और अगर हमारे तरीके से पढ़ रहे हो तो तुम जन्नती हो, और नहीं हो तो जहन्नमी हो. मुझे चंद दिन पहले एक किताब देखने का इत्तफाक हुआ, बचपन से कहना ही चाहिए, यानी जब से शऊर संभाला दीन का सीखा, एक हदीस इतनी दफा सुनी सुनाई, बल्कि याद भी की थी हमने, तो मुझे आज भी याद है कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही. ये हदीस हमने याद की थी 100 हदीसों में से. अब वो हदीस साफ तर्जमा आपको भी आता है कि अल्लाह के नबी ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक उसके नबी की सुन्नत. जो इस पे जाएगा, लन तदिल्लु मा तमस्सक तुम बिहिमा, तुम हरगिज नहीं भटकोगे जब तक तुम इन दो चीजों को नहीं पकड़ोगे. तो एक बुक किसी की नजर आई तो मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने उसमें क्या लिखा हुआ था, हदीस क्या लिखी थी, अल्लाह के नबी ने कहा तरक तू फी को ममरइन लन तदिल्लु, पूरी शुरू वही था, और उसमें किताबुल्लाह और उसके आगे सुन्नत रसूल नहीं था, बल्कि क्या था कि मोहब्बत अहले बैत ही, अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, अगर इसको पकड़ लोगे तो तुम कभी नहीं भटकोगे. मैं हैरान रह गई कि कितनी वाज़े किस्म की ये एक इफ्तराबाजी है. अल्लाह जाने उन्होंने ये रिवायत कहाँ से निकाली या कहाँ से हुई, तो लोग उसी में खुश हैं. और इतनी बातें इतनी बातें. कभी आप फिरका वारिया से मुतल्लिक को बुक खोल के तो देखे, आपका दिमाग घूमने लगेगा, शक पड़ने लगेगा आपको अपने ऊपर भी कि मैं ठीक हूं नहीं, ये तो इतनी शद्दो मत से खुद को ठीक कह रहे हैं. और हर बंदा कुरान से ही दलाइल लेके आता है. आप देखते हैं छोटे छोटे क्लिप्स आपको भेजे जाते हैं, आप सुनते होंगे, देखें हर बंदा अपने आप को ठीक कह रहा है, कुल्लु हिस्बिन बिमा लदैहिम फरिहून. तो यहाँ जो लफ्ज फर्रकु आया ना, ये वही है जो पीछे गुजर चुका, वाइस फरक ना बिकुमुल बहर फंजैनाकुम वगरकना अल फिरौन, सूरह बकरा 50 में था. फरका का मानी होता है जुदा करना, फाड़ देना. जब ये फर्रका लफ्ज आ जाता है ना, जैसे रा पे पेश है, यानी तफील में चला गया, इस पे शद आ गई, तो इसका मानी क्या होता है कि किसी चीज को काट देना, तोड़ देना और टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी बहुत ही ज्यादा चॉप करने के मानों में लिख सकते हैं. इस तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने दीन को, जो दिल चाहा ले लिया, जो दिल चाहा छोड़ दी, जो पसंद नहीं आया उसको पीछे कर दो, जो लेना था वो ले लो. तो इसी से लफ्ज फिर फिरका है. फिरका या फिरक क्या होता है, किसी चीज का कटा हुआ हिस्सा. हैंगिंग चीज नहीं होती, जैसे जानवर का अगर कान काट दे तो वो साथ ऐसे लटकता रहेगा, इसको फिरका कहते हैं. कि लोग एक छोटा सा टुकड़ा काट के बैठे में, सूरत शोरा की आयत नंबर 63 में भी आता है, फन फलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौद अजीम, तो वो समंदर फट गया और फिर हो गया हर टुकड़ा एक बहुत बड़े पहाड़ की मानित. तो गोया के फिर यहां दीन को फाड़ने और टुकड़े टुकड़े करने से मतलब यह कि दीन के नाम लेने वालों ने अपनी इताअत को ऐसे बखेर दिया कि जिंदगी के एक हिस्से में तो अल्लाह की इताअत करते हैं और दूसरे हिस्से में माशरे की इताअत करते हैं, तो तीसरे हिस्से में वो नफ्स की बात करते हैं. नतीजा क्या निकला, हलत मलत हो गया, सारा निजाम बिखरा हुआ है. इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वदूह मुखलिसीन लहुद्दीन, سورت الاعراف 29 کہ خالص کر کے اس کو پکارو پھر بات بنے گی. تو یاد رکھیے کہ انسانوں میں جس کی بھی بات ماننی ہے, ماں باپ کی مانتا ہے انسان, استادوں کی مانتا ہے, شوہر کی مانتا ہے, حکام کی مانتا ہے, ان سب کی بات کون سی اور کتنی ماننی ہے اور کہاں تک ماننی ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بیچ میں ہوگی. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی اس کام میں جس میں خالق کی نافرمانی ہو. اور جب فرقہ واریت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. سچ کے جھوٹ, آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے حنفی ہونا نجات کا ذریعہ, شافیوں سے پوچھیں, مالکیوں سے پوچھیں, بریلویوں سے پوچھیں, دیوبندیوں سے پوچھیں, سب کہیں گے بس ہم ٹھیک ہیں اور ہر ایک اپنے اوپر خوش ہے. ایک بک پڑھائی تھی میں نے کچھ عرصہ پہلے, تو اتحاد ملت کے نام پہ چھوٹی سی بک ہے, چاہے 7-8 سیشنز ہوئے تھے. بہت ہی بہترین طریقے سے یہ جو آج کے دور کے فرقے واریت ہے اس میں کیا, یہ ہم اگلے نور اللہ نور کورس میں پڑھاتے ہیں کہ دیکھو اب تم دین کے لیے نکلے ہو تو کس دین کے لیے نکلنا ہے, اور اس میں سب لکھا ہوا اتحاد کے راستے کی رکاوٹیں کیا. سب سے بڑی رکاوٹ میں ہوں انا خیر. ہر بندہ اپنی ذات کو بڑا سمجھ کر دوسرے کے ساتھ اتحاد کر نہیں سکتا, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا گروہ اور اپنا فرقہ قرآن اور سنت کو رکھیں. کوئی آپ سے بھی اب پوچھ سکتا ہے, پوچھتے تو ہوں گے, اب تو یا پوچھ پوچھ کے تھک گئے ہوں گے کہ آپ کا فرقہ کیا ہے, آپ کے استاد کا فرقہ کیا ہے. یہ فرقہ ہمارا منیبین الی فاقم وجہ کل دین حنیفہ قال اللہ وقال رسول, یہ فرقہ ہمارا. ہم نے تو آج تک کسی کا نام نہیں سنا دوسرے کا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی وہ زندگی میں دن دکھایا ہی نہیں کہ کبھی کسی انسان کی نسبت ہو. اللہ کے ساتھ جب نسبت جڑتی ہے تو انسان پھر اس کے بعد کوئی دوسری لینا چاہتا ہے؟ وہ لیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. جب ایک انسان کو اللہ کی اتنی قدرتیں دکھتی ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا بنتا ہے, ناممکن ہے. اس لیے ہم سب کے لیے اس میں میسج ہے, ہر رنگ ہر فرقے گروہ نام سے خود کو آزاد کر کے اپنا کام وہ رکھ لیں کہ ما علی من امان علیہ, جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا اور صحابہ کا. جو فرقہ صحابہ کا تھا وہ ہمارا ہے, جو ابو بکر کا فرقہ تھا وہ ہمارا ہے, جو عمر کا فرقہ, عثمان کا, علی کا, عشرہ مبشرہ کا, بدری صحابیوں کا, اور بیت رضوان والے صاحب جو تھے جو ان کا فرقہ تھا وہ ہمارا ہے. اگر وہ حنفی تھے تو ہم بھی حنفی, وہ مالکی تھے تو ہم بھی مالکی, اور سو آن. آپ دیکھتے ہیں یہ سارے فرقے تو اس سے کئی سو سال بعد نکلے, جس کے بغیر آج تسلی نہیں ہوتی لوگوں کی. اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے راستے کی دو بڑی رکاوٹیں ہیں, ایک خواہش, نیند چھوڑنی پڑتی ہے, آنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے, یاد کرنا پڑتا ہے, آنا چھوڑنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بہت بڑی رکاوٹ فرقہ واریت, کس مسلک سے, کس جماعت سے, کیسے اور کچھ. بہت سارے لوگ صرف آپ کے فرقے کی وجہ سے پریشان ہوں گے, اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں پتا ہمارا فرقہ کیا ہو جائے گا اور کس طرح کر دیں گے. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ جوڑ دے. اب انسان کی طبیعت کا بتایا, اور اصل میں اس میں بھی ایک شرک کی قسم ہے. مکہ والوں کی عادت کیا تھی کہ جب کوئی بہت بڑی مشکل آتی تو پھر اپنے بتوں کو چھوڑ کے اللہ کو پکارتے, اسی کا ذکر ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا ذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ, پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. بات واضح, دکھوں میں فطرت پہ پڑے ہوئے پردے ہٹے تو رب یاد آ گیا, تب سمجھ آیا کہ اللہ ہی ہے. آپ دیکھیے کبھی آپ نے میت والے گھر میں لوگوں کو ویڈیوز پہ فلمیں بناتے اور دیکھتے نہیں سنا ہوگا, کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی, کسی کے ہاتھ میں سپارہ ہوگا, کوئی آیت کریمے کا ورد کر رہا ہوگا, کوئی سورہ یاسین, چپ آہیں بھریں گے. شادی والے ماحول میں کہتے ہیں کوئی فن تو کرو, وجہ کیا کہ جس دن دکھ تھا تو داؤ ربہم منیبین الیہ, پھر اس دن دعوے ارادے نیت دیں آج کے بعد رب کو پکاروں گے, آج کے بعد, آج کے بعد. اور جب اس کے بعد اپوزٹ کہانی ہوتی ہے تو اذا ذاقهم منه رحمه, شادی والے گھر میں کہتے ہیں یہ کیا میت کا معاملہ ہے, یہ کیا شادی والا گھر ہے, اس میں کوئی خوشی نہیں, کوئی ناچ گانا نہیں. اچھا جب دکھ ہوگا تو سیگریگیشن, کمپلیٹ سیگریگیشن, کیونکہ عورتیں بغیر میک اپ کے مردوں نے دیکھ لی تو شاید چیخ مار کے ماریں گے, یہ وہی بیگم صاحب ہیں جو شادیوں میں دکھتی ہیں دوسروں کی. کریں آپ لوگ ایسے وقتوں پہ بھی اکٹھی کریں مکس گیدرنگ تاکہ ایک دوسرے کو جان سکے. اس دن کوئی نہیں کہتا کہ اس میں, کبھی آج تک آپ نے یہ بات سنی کہ چہلم یا عرس یا چلو جو بھی ختم کرتے ہیں, تیجا کرتے ہیں, اس دن سب کو ایک جگہ بٹھا دو؟ نہیں کرتے. شادی والے دن کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ, جب خوشیاں آتی ہیں, رحمتیں آتی ہیں, सबसे मुश्किल पेपर खुशियों का पेपर है, लिख ले अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल तौहीद के नाम पे जो पेपर है ना, वो खुशी का पेपर है, खुशियों पे बैठते हैं। फिर लोगों की बातें, लोगों का डर, उम्मीदें, ख्वाहिश। मैं सोचती हूँ कि खुशी एक ऐसा मौका होता है जिसमें सारे बुत हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। हमारा नफ्स भी हमें कहता है ये कि तो मौका कभी कभी आना है, करा लो प्लगिंग, क्या फर्क पड़ता है, कोई बार बार थोड़ी शादी होती है, और कोई बात नहीं बना लो वीडियो, फिर क्या, ये तो एक यादगार होती है और शादी तो एक ही मौके पर होती है, और जो लंबी चौड़ी लिस्टें हैं गुनाहों की वो उसे एक दिन, लोगों का भी उस दिन बोझ है। यानी तीनों चारों खुदा साथ है, नफ्स का खुदा भी साथ है, मुआशरे का खुदा भी साथ है, बिरादरी का खुदा भी साथ है, और इसी तरह जो दूसरे हैं वो तो साथ ही हैं पीयर प्रेशर के नाम पे। लेकिन जिसके अंदर तौहीद होगी वो कट जाएगा, लेकिन वो फिर उस चीज़ को रुकेगा नहीं। आपको मैंने वाक्य सुनाया था पीछे, बहुत पहले, याद होगा कि नहीं, एक बच्ची जिसकी माँ ने उसको बहुत मजबूर किया था, नमाज नहीं पढ़ो, वजू करना पड़ेगा, मेकअप धुल जाएगा, लेकिन उसने कहा कि जो भी मैं तो पढ़ूंगी, और नमाज पढ़ी, और हॉल में आने से पहले उसका इंतकाल भी हो गया, तो मर गई। तो अगर वो शादी वाले घर जाके पढ़ूंगी, रात को पढ़ूंगी, तो ना ही पढ़ती तो क्या था जी, शादी का मौका था। तो अगर वो माँ की बात ना मान के गई तो क्या उसने अच्छा किया कि बुरा किया? खुशियों के मौके पे अपनों की बात मान लेना अल्लाह को नाराज करने वाली, बे रब्बी हम युश्रिकूना, क्यों करते हैं ऐसा? अब क्वेश्चन, व्हाई दे आर डूइंग दिस, लियकफुरु बिमा आतैना हुम, इतना सख्त अंदाज है ताकि ये ना शुक्री करें इसकी जो हमने इनको अता किया। दो लफ्ज हैं इसमें, एक तो ली यकफुरु, इंसान की गुस्ताखी का जिक्र है, इतना ना शुक्र, इतना थोड़ दिला। खुलिकल इंसान हलुआ का लफ्ज आता है 29वें पारे में, हलू है, एंग्जाइटी का मरीज है, हर वक्त हौलता ही रहता है, कांपता ही रहता है, ऐसे लगता है हर मौका आखिरी मौका है, इनकार करता है अल्लाह की नेमतों का। और दूसरी बात देखे, आते ही ना हम, तुम कहां से ले आए ये खुशी जी, हमने दी है, तो जो देता है क्या वो वापस नहीं ले सकता? आपको कोई चीज दे, इस्तेमाल करो, किसी वक्त आपसे ले सकता है, और जब रब छीनता है तो फिर चीखे निकल जाती है, काफत मत फसौफतालमोन, खूब फायदे उठा लो, चंद दिन की जिंदगी है, मजे उठाओ, फसौफतालमोन करीब तुमको मालूम होगा। बिल्कुल वही अंदाज है जो सूरत तकासुर में है, कल्ला सौफतालमोन सुम्मा कल्ला सौफतालमोन। तुम्हारी ये 4 दिन की जिंदगी इस महदूद मोहलत में अपनी मनमानियां कर लो, मजे उड़ा लो, आखिराना तुम्हारे ही पास है, वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें पता लग जाएगा, असल हकीकत तुम पे पता चल जाएगी। आप देखिए कि ये आयतें पढ़ते हुए कि आपको यह लग रहा है कि ये कुरान एक बेजान किताब है? मुझे तो ऐसे लगता है ये किताब नहीं है, ये वीडियो है जो अपने एक्शंस के साथ बोल बोल के हमें बताती है। हम इससे आंखें नहीं मिला सकते, हम इसको फेस नहीं कर सकते, इसीलिए फिर ये किताब पढ़ने वाले लोग जो होते हैं ना, वो फिर या तो ऐसे मौकों पे जो जिंदगी के मुश्किल मरहले होते हैं उस पे गायब हो जाते हैं, या फिर वो किताब से गायब हो जाते हैं। मेजॉरिटी जो मुसलमानों की आज है ना, वो इन चोटों की वजह से किताब नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये किताब डायरेक्ट हिट करती है, और लफ्ज ही ऐसे हैं कि जिसके ऊपर कोई दूसरी बातें तो इतनी होने की जरूरत ही नहीं होती, वो अपने अमल से बताया जा रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं मंजलना अलैहिम सुल्तानन, क्या हमने इन पर कोई ऐसी सनद उतारी है? फहुवा यतकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून, जो इन्हें इन चीजों के मुतालिक बता रही है जिनको ये ट्रिक ठहरा रहे हैं, यानी ये जो भी शिर्क है इनके, क्या इसकी दलील में कोई किताब उतरी हुई है? कोई सहीफा, कोई छोटा सा मोजजा, कोई बात, कोई आसमानी दलील, कोई अकली नहीं तो नकली दलील दिखा दें कि पता चल जाए कि अल्लाह के मां सिवा को खुश कर लो और उससे मांग लो। कोई हिदायत इनको मिल गई, कोई नया वर्जन कुरान का आ गया कि अब ये आज के दौर में जायज है, और सूद भी जायज है और इंटरेस्ट भी जायज है, कोई ऐसी चीज दिखी? इल्म आ गया, गोया कि इससे पता चलता है ना कि कुरान क्या है, कलाम है, किताब कलाम करती है, इल्हामी किताब के साथ लफ्ज यतकल्लम आया, यानी क्या अल्लाह की नाजिल करदा किताब इनके बारे में गुफ्तगू करती है। तो गोया कि आप देखिए कि कुरान हकीकत में बंदे से बातें करता है। किसी न्यू मुस्लिम का कॉल था कि मैं इस किताब को क्या पढ़ूं, मैं इसको पढ़ूं, इससे पहले ये मुझे पढ़ लेती है। और सच, अलामा इकबाल का भी एक फारसी का शेर है, उसमें भी इन्होंने कुरान को क्या कहा है, गोया, यानी ये बोलने वाला, कि अल्लाह ताला की माने इसका ये कलाम भी पोशीदा और जाहिर है और जिंदा और पायदार है, और इसकी सिफत है कि ये किताब अपने पढ़ने वाले के साथ हम कलाम होती है और इससे गुफ्तगू करती है। मिसल हक पिनहा वहम पैदा अस्ती, जिंदा उपाइंदा गोयास्ती, जैसे अल्लाह बंदों से बात करता है इस तरह ये किताब भी बात करती है, जैसे अल्लाह छुपा हुआ है इस तरह ये किताब भी पोशीदा है, इसके असरार है। फिर एक और इंसान का वसफ, वही नासर रहमतन फरीहू भी हा, और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो इस पर इतराने लगते हैं। यहाँ फरेहा का लफ्ज बैड मीनिंग्स में है, पीछे भी बताया था फरेहा दो तरह का है, एक होता खुशी फरहत, इनबिसात खुशी महसूस करना, प्लेयर। लेकिन फरेहू का एक मानी होता है शोखियां बिगाड़ना, इतराना, हम बहुत है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे जैसा कौन, कोई हमसा हो तो सामने आए। तो ये लोगों का हाल है, जरा सी खुशी आती है तो ये खुशियां मारने लगते हैं और इस तरह बातें करते हैं जैसे सब कुछ है। हाँ वह इन तुसिब हम सही है तुम बीमा कदमत आई दी हिम, और अगर इन पर कोई मुसीबत आ जाती इनके अपने हाथों की कमाई के सबब, इजा हम यकनतून, जब ही वो अपनी आस तोड़ देते हैं। कितना खूबसूरत लफ्ज है, सारी आस उम्मीद फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी खुशियों में बहकते हैं और गम में डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये काफिर का मामला है। मोमिन क्या है, खुशियों में कहते हैं इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील, हो गया तो ठीक है। आप कभी लोगों को अपने भाई बहनों की शादियों की तैयारियां करते देखा करें, या अकलौता बेटा है तो उसकी शादी की तैयारियां, ऐसे लगता है पांव जमीन पे नहीं आ रहा और वल्लाह ही ऐसे लगता है बस भाई आखिरी खुशी है, कर लो जो करना है, हो जाए जो, कोई बात नहीं, बार बार नहीं होता, ये ना करो वो ना करो। लेकिन जब खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला बचा के रखे कोई तकलीफ आती है तो फिर आपे से बाहर हो गए, डिप्रेशन में चले गए, सकते में चले गए, हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं आराम से रहो। ये मजमून आगे हम पढ़ेंगे सूरत हदीद में भी, और इसी तरह हामीम सजदा में भी बहुत खूबसूरत आयत आती है कि फिक्र ना करो, जो मिल गया कोई बात नहीं, इट्स ओके गुड, अल्लाह ने दिया, और जो तुमसे चला गया, जो चूक गया, डोंट वरी, तुम्हारा था ही नहीं, होता तो जाता क्यों, और होता है तो फिर भी तो चला ही जाता है। आप देखिए ना कि आप अल्लाह से औलाद मांगते हैं, नहीं मिलती, एक केस नहीं मिली, दूसरी आपको मिल गई तो फिर फौत हो गई, बच्चा फौत हो गया एक दो साल में, कौन सा केस वर्स्ट है, पहला कि दूसरा? दूसरा, नेमत पाने के बाद तो बहुत तकलीफ होती है। आप किसी चीज को छोड़े ये बेहतर है या कोई आपको छोड़ दे? हर चीज से इंसान को ये समझ आती है कि मोमिन खुशी और गम को अल्लाह का तोहफा समझता है। देखिए कभी आपकी दोस्त आपको स्वीट डिश बना के भेजती है ना, डिजर्ट, एक बाइट खाते हैं, वाह स्वीट, मजे की, सॉफ्ट, ठंडी। कभी वही दोस्त आपको कड़वे करेले भी पका के खिलाती है। अब करेले खाए तो आपके करेलों में चीनी क्यों नहीं, तो बेवकूफी है। जिस तरह आप शौक से उसके हाथ का डिजर्ट खाते हैं उसी तरह आप उसके हाथ से करेले भी खाते हैं। तो अल्लाह ताला अगर गम देता है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे याद तो रखा, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी, मैं आपकी यादों में तो हूं। साहबा के ऊपर 40 दिन तक कोई गम या तकलीफ ना आती तो परेशान हो जाते, कहते लोगों सोचो तुमने क्या गुनाह किया है कि तुम्हारा रब तुम्हें भूल गया। ये जो तकलीफें आती है ना, ये झटके होते हैं, ये हमें हमारी असल याद कराते हैं और ये हमें अल्लाह से जोड़ने चाहते हैं। कभी आपने वाईफाई सिग्नल्स देखे होंगे ना, जब एक जगह के सिग्नल लूज होते हैं ना, कच्चे होते हैं, तो दूसरे सिग्नल खुद ही ले लेता है आपका कंप्यूटर। जब हमारे तौहीद के तार लूज होने लगते हैं ना, तो अल्लाह फिर दूसरों के ऊपर हमें डिपेंडेंट करता है। वो ना मिला तो पता नहीं क्या क्यामत आ जाएगी, वो ना जिंदगी में आए तो ये हो जाएगा, और आ जाता है फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता, तो फिर कहते हैं अल्लाह मैं क्या करूं। तो जरूरत है इस बात की कि सबसे कट के मुनीबी न इलाही। अब आखिरी चंद आयतों में अल्लाह ताला फिर गौर फिक्र की दावत देते, अब अलम यरो, क्या वो देखते नहीं है, मुराद क्या कि देखो गौर करो, क्या अन अल्लाह यबसुतु रिज़्क, अल्लाह कुशादा कर देता है रिस्क, लिमन यशाउ, जिसका चाहता है। सोचें जरा आप 3 सेकंड के लिए अपने इमेजिनेशन में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, प्यारों में देखिए, कुछ के पास बहुत दौलत है ना, जद्दी पुश्ती है, कई मिलेंगे, एक नहीं आपको मेरे हाल 20 फैमिलीज नजर आ जाएंगे अपने खानदान की, कि अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है, और इतना दिया है कब का दिया है, जब से आप उनको देख रहे हैं उनको दिया हुआ है। कुछ तो होते ना उनके ऊपर नीचे चलते हैं मामले, लेकिन कुछ शुरू से ही दिए हुए अल्लाह ने, वह यकदीर। अब दूसरी तरफ नजर डालें अपने कुछ रिश्तेदार, इतने बेचारे हैंड टू माउथ, इतने गरीब सफेद पोश हैं, अब जिसको दिया क्या वो बहुत डिजर्विंग था, और जिसको नहीं दिया क्या वो अल्लाह की नजरों में कमजोर था? नहीं, इन फी ज़ालिकल आयातिल लिक़ौमिन यूमिनून, ये इसमें अलबत्ता निशानी है उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। क्या ईमान है भाई, अब आप गौर कीजिए, अल्लाह ने इतनी बात करके छोड़ दिया। सवाल यह है कि कुछ को ज्यादा रिस्क मिलना और कुछ को कम मिलना, इसमें ईमान वाली कौम का क्या तस्करा है और उनके इसके साथ क्या ताल्लुक है? आपको क्या समझ आता है इसको सुनकर? जी आप,
मुझे ये लगता है कि मुख्तलिफ फाइनेंशियल सिचुएशन देख के अल्लाह ताला ने इस जिंदगी को चलाया हुआ है। कुछ लोगों की जरूरत है, वरना सब लोग एक से ही लेवल पे होते, तो किसी ना किसी को जरूरत होती और ना ये आगे कारवानी हस्ती चलता।
ठीक है जी, आप
जी, अल्लाह ताला ज्यादा खोले देखे बंदे को आसमाइश में डालती, आसमाते हैं और उनका हिसाब ही ज्यादा होगा, काम देने वाले का साथ ही काम होगा।
ठीक है जी। आप
मेरे समझते हैं कि जो हमारे पास जिसको ज्यादा जरूरत मिलती है उसको भी ध्यान ही समझे कि वो गरीब को देगा, अल्लाह ने बैलेंस रखा है ना।
ठीक है जी। आप
जैसे ईमान का बैलेंस चेक करने के लिए कुछ लोगों को ज्यादा दिया गया
कि वो उसका क्या करते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल जी। आप
जी मुझे ऐसी समझ आती है कि जैसे अपने बंदे को तो खूब अच्छी तरह जानता है कि ये गरीब है, अगर मैंने इसको ज्यादा दिया तो ये गरीबी में तो मुझे याद करता है, लेकिन अगर मैंने इसको ज्यादा दिया तो ये मुझे बिल्कुल भूल जाएगा।
सही, बिल्कुल सही जी। आप जी, आप सब ने जो भी कहा मुख्तलिफ एंगल से बिल्कुल ठीक कहा। एक हदीस बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बात को वाज़ह करती है। खुलासा क्या है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह कुछ लोगों को बहुत रिस्क देता है। क्यों? अगर उनके रिस्क को कम करे तो वो काफिर हो जाए, यानी वो ज्यादा दौलत में ज्यादा नेकियां कर रहे हैं, उनकी तबीयत में शुक्र है। कुछ लोग शुक्र वाले होते हैं, कुछ सब्र वाले होते हैं। इसके बरक्स फरमाया कुछ लोगों को अल्लाह नपा तुला देता है। क्यों? कि अगर अल्लाह उनको जरा सा ज्यादा दे दे तो अल्लाह का इनकार कर दे। वो थोड़े दिले जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कैले पर, समझते ना, किसी का कैले पर जितना होता है ना, आप उसको उतनी ही बात बताएं तो काफी होती है। कैले पर को उर्दू में औकात कह लें। हर एक औकात होती है। कुछ लोग हैं उनकी औकात ही बस 100 रुपए की, उनको 100 ही दें तो वो खुश हैं। और अगर एक बंदा ऐसा है कि जिसको 10,000 भी दे दें तो वो अपनी आपे से बाहर नहीं जाता और वो 9 दौलतियां बनकर ढींगे नहीं मारता। अल्लाह ताला ने यहां बता दिया कि रिस्क का ज्यादा होना या कम होना इसका बराह रास्त ताल्लुक इंसान के ईमान के साथ है। हमारे लिए अमल की क्या बात है? पहली बात है आपको जो दिया है कि इतना ही काफी था, इतना ही काफी था। जो मुझे दिया है अल्लाह, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। फिर देखिए रिस्क पैसों का, रुपयों का ही नहीं होता, सोने का नहीं होता, रिश्तों का। आपको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं इस काबिल थी, पता नहीं औलाद की मोहब्बत में मैंने क्या कर देना था। अल्लाह ताला ने आपके बचपन में आपकी माँ को ले लिया, बाप को ले लिया, भाई बहन नहीं मिले, आप अकेलती हैं, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह जो तूने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं दिया उस पर सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसान का अखलाक बदल जाता है। और इसमें एक और बात भी समझ आती है कि कुफर और शिर्क का इंसान के अखलाक पर भी असर पड़ता है। जब ईमान बिल्ला पुख्ता होता है ना, तो अमीर हो या गरीब हो आपके पैमाने फर्क नहीं होते अपनों से मिलने के। अगली आयतों की तरफ इशारा है कि जब एक इंसान को अल्लाह से ताल्लुक होता है तो उसको ज्यादा मिले या कम मिले वो कम ज़र्फ नहीं होता। खुशी में भी रब को याद करता है तो गम में भी करता है, अल्लाह के बंदों से भी तवाज़ो करता है, उस माल में अल्लाह का हिस्सा भी रखता है और अपने प्यारों को भी देता है। अब इन आयतों में अल्लाह ताला ने थोड़ी सी मजीद बात हमारे सामने रखी और वो क्या है, फाती जल कुर्बा हक कहो, तो कराबत दारों को उनका हक दो, वल मिस्कीन अबन सबीली, और मिस्कीन और मुसाफिरों को भी उनका हक दो। दौलत की बात हुई ना, जिसको ज्यादा दिया है ना, ऊपर वाली आयत में देखिए जिसके लिए यबसुत का लफ्ज था, उसके लिए इस आयत में कितने खतरे हैं। जिसको अल्लाह ने माल बहुत दिया, अब उसको खराबदारों का हक देना पड़ेगा, मिस्कीनों का भी देना पड़ेगा, मुसाफिरों का भी देना पड़ेगा। इसके बरक्स एक बंदा है जिसके लिए यकदिर तंगी का रिस्क है, और कदर कहते हैं तंगी को, ये जो लैलतुल कदर है वो भी यही लफ्ज है, तकदीर का लफ्ज भी इसी से ही है। तंगी वाले रिस्क के ऊपर वाले पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। कल अल्लाह उनसे नहीं पूछेगा रिश्तेदारों को क्यों नहीं दिया, खुद तो इतने मौजें करते थे, जितने पैसों का तो तुम एक वक्त में खाना खा लेते थे उतने में हो सकता है एक हफ्ते का राशन आ जाता तुम्हारे गरीब रिश्तेदारों का, जितने का तुम एक जोड़ा बनाते हो इतने में हो सकता है कि किसी का कमरा बन जाता, हो सकता था ना। तो जिसको नहीं मिला वो तो छूट गए इन चीजों से, लेकिन जिनको मिला है तो कहा फिर अब दो, फआती जल कुर्बा हक्का। कुरान का बड़ा खूबसूरत अंदाज है ये कराबदारी के लिए, ऐसे लग रहा है चीज उनकी है, आपके पास थी और अल्लाह कह रहा है वो आ रहा है उसको दे दो। ये जो हम सोचते हैं ना कि हम अपने गरीब रिश्तेदारों को स्पॉन्सर करते हैं और हम देते हैं, तो हम देते हैं नहीं, अल्लाह कहते हैं हक कहू, ये हक कहू को हाईलाइट कीजिए, उसके माल का हिस्सा अल्लाह ने तुम्हारे अंदर मिला दिया था। देखिए बाज़ लोग कहते हैं ना कि जब अल्लाह रज़ाक है तो फिर कुछ लोग भूख से क्यों मरते हैं और कुछ इतने अमीर क्यों हैं, तो उसका जवाब आपको इस आयत में समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई होगी तो सब के लिए एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया। हम सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए समझ लेते हैं, जब दुनिया बनी 1,000 लोग थे दुनिया में और अल्लाह ताला ने सब के लिए 1,000 पाउंड रख दिए, حصہ ڈال دیا اس دنیا میں، اب 1,000 کو 1,000 سے ضرب کر دیں جتنا یہ دنیا کے ٹوٹل ایسٹ تھے. اب ہے تو یہ 1,000 لوگوں کے تھے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ 1,000 میں سے 333 کو، یعنی 1/3 جو لوگ تھے، ان کو تو 1,000 ہی دیا، جتنے چاہیے تھے ان کے، ختم، دیٹس اٹ. اب جو پیچھے 2/3 رہ گئے تھے نا، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک کو صرف 500 دیا 1,000 دینے کی بجائے، اور جو دوسرا 2/3 تھا نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے 1500 پاؤنڈ دے دیا. اب کیا ہوا؟ پہلی قسط جس کے پاس اپنا ہے برابر کا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سفید پوش، اپنی زندگی کی سروائیول گائیڈ چلا رہے ہیں. تیسری قسم کے لوگ جن کو صرف 500 ملا ہے، یہ ہیں ہینڈی، محتاج، مسکین، جو ذکر ہو رہا ہے. اور یہ جو بیچ میں 1500 پاؤنڈ والے ہیں نا، یہ آپ اور میں، جن کے پاس 500 ایکسٹرا آگے تھے. ہمارا فرض کیا تھا کہ ان 500 کو ان 500 والوں کے ساتھ جا کے شیئر کریں، ان کا بھی 1,000 پورا، ہمارا بھی 1,000 پورا. اللہ نے یہ کام خود کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لاؤ فرشتوں، ذرا ان کا دل دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ بچہ آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ 3 کینڈیز ہیں لے جاؤ، اور وہ دو دوست ہیں ان کو بھی دے دو اور ایک تم لے لو. عقل مند بچہ تو یہی کرے گا، اور جو زیادہ عقل مند ہے وہ پہلے ہی وہاں کھڑے ہو کے کھول کے کھائے گا، دوسری راستے میں کھائے گا، اور تیسری ان کے پاس پہنچنے سے پہلے کھائے گا، میری ہے، اٹس مائن. فرق ہے نا. تو یاد رکھیے، جو دولت مند ہیں وہ بڑی مشکل میں. ہر بندہ اپنے ہر رشتہ دار کو ذرا اپنے تصور میں لائے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اپنے ذہن میں اپنے غریب رشتہ داروں کو لائیے، مسکین، سفید پوش، اور پھر اپنے مال اور اپنے ایسٹس پہ نظر ڈال کے پوچھئے ان کا کون سا حق میرے مال میں حق کا ہو. ایک تو اس پہ، کیونکہ لفظ حق کا ہو جو ہے نا، یہ اس میں ڈیپتھ بہت ساری ہے. ایک تو یہ نا کہ ان کے مال کا حق ہے، دوسرا یہ کہ مال تمہارا ہی تھا لیکن وہ ان کے لیے تمہیں چاہیے تھا. وہ کیسے؟ اگلی آیتیں پڑھیں گے تو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک خیرن، یہ بہتر ہے، یہ اچھی بانٹ ہوگی. کن کے لیے؟ للذین یریدون وجہ اللہ، ان کے لیے جو چاہتے ہیں اپنے رب کا چہرہ، جن کو قیامت کے دن رب کو منہ دکھانا ہے، ان کے لیے تو یہ بہت بہتر ہے. کیا بھلا؟ کیا آتی ذال قربا حقہ والمسکین او ابن السبیل، اپنے مال کو شیئر کرو دوسروں کے ساتھ اگر کل اللہ کو منہ دکھانا چاہتے ہو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے لے. ہمارا کتنا کو یقین ہے اس کتاب کی باتوں پہ؟ پوچھئے خود سے، 100%. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس ایک آیت پہ ذرا نظر جمائیں، ذالک خیرن، یہ بہتر ہے. پھر کا ہم المفلحون، اس کے باوجود اگر ہم اپنی دولت کو اپنی خواہشات پہ سمیٹیں اور اپنے ہی لیے لے کے بیٹھے رہیں، اور کتنے لوگ دنیا میں غریب ہیں، دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے اور ہماری روٹیاں ضائع ہوتی ہیں. کئی لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے اور ہمارے گھروں میں فالتو کمرے پڑے ہوئے ہیں، ہماری بجلی ضائع، ہمارے پانی کھلا پڑا ہے، ہم ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں. اگلے سبق میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے کہ ظاہر الفساد، زمین میں آج فساد ہی فساد ہے، کیونکہ لوگوں نے ریسورسز کو مس یوز کیا. حق والوں کا حق مارا تو اپنے حق میں ڈال دیا. اسی لیے اب اگلی آیت کو ذرا غور سے سنیے گا،